आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हिमांशी भारद्वाज और मैं आपके साथ आपकी 9th क्लास की साइंस की बुक को डिस्कस कर रही हूँ। आज हम आपके साथ चैप्टर नंबर 2 का 3rd पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम अपना टॉपिक 2.3 कंटिन्यू करेंगे, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। उसके अंदर हमने 2 सब टॉपिक्स को लास्ट ऑडियो में कवर किया था, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक एंड हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। इन दोनों टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं। आज हम सब टॉपिक लेंगे 2.3.3, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। यानी कि 2 इमिसिबल लिक्विड हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर, उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, उसकी सेपरेशन टेक्निक क्या है, उसको आज जानेंगे। सो एक्टिविटी 2.6 से बिगिन करते हैं। लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। सो हमें केरोसिन ऑयल को सेपरेट करना है पानी में से यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। आप मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए एक सेपरेटिंग फनल में उस मिक्सचर को डालिए। Let it stand undisturbed for some time so that separate layers of oil and water are formed. इसको थोड़ी सी देर के लिए undisturbed छोड़ दीजिए ताकि कुछ समय बाद separate layer बन जाए पानी और oil. Open the stopcock of the separating funnel and pour out the lower layer of water carefully. आप stopcock का funnel का जो stopcock है उसे खोल दीजिए और पोर आउट कर दीजिए लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेस द स्टॉप कॉक। आप क्लोज कर दीजिए स्टॉप कॉक को जैसे ही ऑयल पहुंचता है स्टॉप कॉक के पास। आप इसे इस फिगर को देख के समझ सकते हैं, फिगर 2.6, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड से। वहां पे आपको एक सेपरेटिंग फनल दिया गया है जिसमें केरोसिन और वाटर की 2 अलग अलग लेयर्स बन गई है और नीचे स्टॉप कॉक दिया गया है जिससे हम बार बार खोल के पानी की लेयर को सेपरेट कर रहे हैं। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? फर्स्ट, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। सेकंड, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। एक तो इसका एप्लीकेशन है कि हम मिक्सिंग ऑफ ऑयल और वाटर, मिक्सचर ऑफ जो ऑयल और वाटर का मिक्सचर है उसको सेपरेट आउट करने के लिए यूज करते हैं, जैसा कि अभी इस एक्टिविटी में किया। दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो है कि आयरन की जो ओर्स होती हैं, जो खाने होती हैं, वहां पे आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हल्का स्लैग है उसको ऊपर से इसी प्रकार से रिमूव किया जाता है जिससे कि जो मोल्टन आयरन है वो फर्नेस के बॉटम पर रह जाए। So these are some applications. The principle is that immiscible liquids separate out in layers depending on their densities. इसका जो principle है वो ये है कि immiscible liquid जो हैं वो separate out हो जाते हैं layers के form में उनकी densities के आधार पर। जैसे जैसे density होगी उसके आधार पर वो layers बना लेते हैं। Now next subtopic 2.3.4, how can we separate a mixture ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सो हम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस स्टेट ऑन हीटिंग। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अमोनियम क्लोराइड को डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस स्टेट में हीटिंग के द्वारा चेंज कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। सो to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity, salt in this case, the sublimation process is used. So, ये क्या होता है कि जो एक sublimable volatile component है, उसको non-sublimable impurity में से निकाला जाता है। यही क्या है? Sublimation है। Some examples of solids which are sublime are ammonium chloride, camphor, naphthalene and anthracene. So, ये कुछ examples है जिनको sublimation की technique से separate out किया जाता है। Now, refer to figure 2.7, separation of ammonium chloride and salt by sublimation. तो सब्लिमेशन कैसे होता है वैसे हम चैप्टर वन में भी देख चुके हैं, अभी आप यहाँ फिर से देख लीजिए कि एक फर्नेस तैयार किया गया है और कॉटन प्लग से एक फनल उसके ऊपर डाल के चाइना डिश के ऊपर, और उस चाइना डिश के अंदर क्या है, मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड का और सॉल्ट का। सो जब हम उसे हीट करते हैं तो सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड फनल के ऊपर ऊपर जमा हो जाता है और अमोनियम क्लोराइड की कुछ वेपर्स भी होते हैं। सो इस प्रोसेस को ही हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं, जहां पे कोई भी सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस स्टेट में विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट कोई भी सब्सटेंस चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक 2.3.5, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। तो जो ब्लैक इंक होती है पेन्स के अंदर, क्या उसके अंदर सिंगल कलर ही होता है? इसके लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 2.7। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एच, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, एक स्मॉल ड्रॉप डालिए इंक का जो कि वाटर सॉल्यूबल है किसी स्केच पेन से या फाउंटेन पेन से, एट द सेंटर ऑफ लाइन, लेट इट ड्राई, लोअर द फिल्टर पेपर इंटू अ जार और ग्लास और अ बीकर और अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल एज शोन इन फिगर 2.8B and leave it undisturbed. Watch carefully as the water rises up on the filter paper. Record your observations. So figure 2.8 को देखिए, एक spot of ink लगाया एक filter paper के ऊपर, एक strip of filter paper लिया, उसके ऊपर एक line drawn करिए जहां पे हमने spot डाल दिया ink का। अब next B में आप देखिए, उसको हमने एक test tube के अंदर डाला है या glass rod के अंदर डाला है और paper clip से उस filter paper को adjust कर दिया है। ना उसके अंदर एक वाटर है, तो ये एक सेपरेशन टेक्निक है डाइज की। यहाँ पे हमने एक ब्लैक डाई लिया है और इस प्रोसेस को कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी से हम सेपरेट करते हैं डाइज जो कि ब्लैक इंक के अंदर प्रेजेंट है। नाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेस ऑन इट। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं जब फिल्टर पेपर के ऊपर जब हम वाटर को राइज करते हैं? Do you obtain different colors on the filter paper? तो इसमें क्या होता है, एक ब्लैक ये इलस्ट्रेट करता है कि ब्लैक इंक के अंदर कई सारे डाइज होते हैं, तो इसमें एक पैटर्न बन जाता है कलर्स का, वो ऑब्जर्वेशन आता है, आप करके देखिए इसको। What according to you can be the reason for the rise of colored spot on the paper strip? तो वो जो पेपर के ऊपर हमने स्पॉट बनाया था उसका भी राइज हो जाता है, उसका लेवल राइज हो जाता है, तो इसका रीजन क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। The ink that we use has water as the solvent and the dye is the soluble in it. As the water rises on the filter paper, it takes along with it the dye particles. जैसे जैसे water का level rise up होता है तो filter paper के साथ साथ जो dye particles हैं वो भी ऊपर की तरफ जाते हैं। Usually a dye is a mixture of two or more colors. Usually dye क्या है, एक mixture है दो या दो से ज्यादा colors का। The colored component that is more soluble in water rises faster and in this way the colors get separated. तो जो colored component का जो part है जो more soluble है वो जल्दी से ऊपर जाता है and get its way the another colors get separated. इस तरीके से क्या होता है, और जो colors उस dye के अंदर present है वो separate out हो जाते हैं। तो ये technique होती है chromatography. This process of separation of components of a mixture is known as chromatography. Chroma in Greek means color. This technique was first used for separation of colors, so this name was given. Chromatography is the technique used for separation of those solute that dissolve in the same solvent. So, ये technique है जिसको सबसे पहले colors के ऊपर use किया गया था, इसलिए इसका नाम chromatography पड़ा। और ये उन सॉल्यूट्स को अलग करती है जो डिसॉल्व होते हैं सेम सॉल्वेंट के अंदर। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। यू विल स्टडी अबाउट क्रोमैटोग्राफी इन हायर क्लासेस। तो कुछ और टेक्निक्स आजकल एडवांसमेंट हो गया है टेक्नोलॉजी में, तो कुछ और टेक्नोलॉजीज इसकी डेवलप हुई हैं जिनके बारे में आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ इट्स एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है क्रोमेटोग्राफी की? फर्स्ट, टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, डाई के अंदर कलर्स हम सेपरेट करते हैं, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। सो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी किस लिए यूज करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक 2.3.6, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। अब दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे? सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी 2.8, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वॉटर फ्रॉम दियर मिक्सचर। सो अब हमारे पास मिक्सचर है एसीटोन का और वॉटर का, अब हमें उनको सेपरेट करना है। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, एक डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए एक फ्लास्क आता है अलग से जिसको डिस्टिलेशन फ्लास्क कहा जाता है। फिल इट विद अ थर्मोमीटर, उसको एक थर्मोमीटर के साथ फिट कीजिए। अरेंज द अपरेटस एज शोन इन फिगर 2.9 में जैसा आपको फिगर दिखा है इस तरीके से अपरेटस आपको सेट करना है। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर, आप उस मिक्सचर को स्लोली स्लोली हीट कीजिए और थर्मोमीटर को देखते रहिए। द एसीटोन वेपराइजेस कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। अब जो एसीटोन है वो वेपराइज हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा कंडेंसर के अंदर, और इसको ले सकते हैं आप कंडेंसर आउटलेट में से, इसको कलेक्ट भी कर सकते हैं। वॉटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, आप देखेंगे जो वॉटर है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर रह जाएगा। सो ये सेपरेशन टेक्निक है जिसको डिस्टिलेशन कहा जाता है। इसके लिए इतना बड़ा सेटअप लगता है जैसा फिगर 2.9 में आपको शो किया गया है। इसमें कंडेंस वॉटर और डिस्टिल वॉटर सेपरेट आउट हो जाता है। नाउ आंसर, वॉट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। इस प्रोसेस को वैसे आप अगर करें तो अपने टीचर के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, फिर आप अपने इलस्ट्रेशंस को नोट डाउन कर सकते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकम कांस्टेंट फॉर सम टाइम, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, व्हाई डू द टू कंपोनेंट्स सेपरेट। तो हियर आर सम क्वेश्चंस जो आपको आंसर करना है आफ्टर यू परफॉर्म द एक्टिविटी। दिस मैथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points. तो ये method distillation है और ऐसे mixture को अलग करा जाता है जिसमें two miscible liquids हैं, without boiling or without decomposition. To separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used. कुछ ऐसे मिक्सचर भी होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ 25 केल्विन का डिफरेंस है, तो उनके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। द ऑपरेटर्स इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनलाइजिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। डिफरेंस सिर्फ उसके ऑपरेटर्स में आता है और कुछ नहीं, इसके बारे में भी आप सीनियर क्लासेस में ही पढ़ेंगे। ए सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स, द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली एज शोन इन फिगर 2.10। अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को देखना चाहते हैं तो फिगर 2.10 देख के समझ सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके जो ये फ्रैक्शन टैंक है सिर्फ उसमें डिफरेंस है। इसके अंदर कुछ बीड्स लगे होते हैं ताकि वेपर्स कूल डाउन हो जाएं और कंडेंस फॉर्म में आ जाए। सो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक 2.3.7, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, हमें एयर में से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को कैसे कलेक्ट करना है, वो एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज करेंगे। द फ्लो डायग्राम 2.11 शोज द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। सो एक फ्लो डायग्राम दिया गया है आपको, एयर को कंप्रेस एंड कूल किया बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, देन यू विल गेट लिक्विड एयर। फिर लिक्विड एयर को किया आपने अलाउ टू वार्म अप एंड स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, देन यू विल गेट गैसेस get separated at different heights, then you will get separately oxygen, argon and nitrogen. So if we want oxygen gas from air, we have to separate out all the other gases present in the air. The air is compressed by increasing the pressure एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर. सो अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हमें एयर की सभी गैसेस को सेपरेट आउट करना पड़ेगा. और इसको हम कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. द लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. नाउ आंसर द फॉलोइंग. अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं जो फिगर 2.11 में दिया गया है. सेकेंड, विच गैस फॉर्म्स अ लिक्विड फर्स्ट एज एयर इज कूल. सो आपको ये फिगर देख के इसका आंसर करना है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक 2.3.8. हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम अ इम्प्योर सैंपल. नाउ यू हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी. एक्टिविटी 2.9. टेक सम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश. अब आपको क्या करना है कि प्योर कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल में से निकालना है. सो उसके लिए आप अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल लीजिए कॉपर सल्फेट का किसी चाइना डिश में. डिजोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में से घोल दीजिए. फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट. इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब आप इवेपोरेट करा दीजिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ताकि आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए. Cover the solution with a filter paper and leave it undisturbed at room temperature to cool slowly for a day. अब उस solution को एक filter paper से आप cover कर दीजिए और उसको undisturbed छोड़ दीजिए room temperature पे ताकि वो धीरे धीरे cool हो जाए. You will obtain the crystals of copper sulfate in the china dish and this process is called crystallization. So अभी आपने एक नया process पढ़ा crystallization. आपको crystals मिलेंगे copper sulfate. So आपने इधर क्या किया? एक इम्प्योर मिक्सचर में से आपने प्योर सैंपल को कलेक्ट किया. नाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश? डू द क्रिस्टल्स लुक अलाइक? हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश? सो फॉर दिस क्वेश्चंस, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्योरिफाई द सॉलिड्स. फॉर एग्जाम्पल, The salt we get from sea water can have many impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. In impurities ko alag karne ke liye crystallization process ko use kiya jata hai. Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystals from a solution. So ek process hota hai jisme aap pure solid ko crystal form mein separate karte hain किसी सॉल्यूशन में से. क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक. ये क्रिस्टलाइजेशन की जो टेक्निक है इवेपोरेशन से काफी बेटर है. बिकॉज टू पॉइंट्स दिए हैं, सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस. सेकेंड, सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन. तो कुछ तो ऐसा होता है कि खराब हो जाता है उसको अगर हम करते हैं इवेपोरेट करते हैं, कुछ क्या होता है डिजोल्व हो जाता है. सो इसलिए जो ये प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन ये बेटर है इवेपोरेशन से. एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस क्या है? फर्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर. तो प्यूरिफिकेशन होता है सॉल्ट का जो हमें सी वाटर से मिला. सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम. एलम यानी फिटकरी. फिटकरी के क्रिस्टल्स को हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स. So, ये दो एप्लीकेशंस हो गए, एक सॉल्ट जो हम सी वाटर से निकालते हैं, दूसरा क्रिस्टल ऑफ एलम इम्प्योर सैंपल्स में से. दस, बाय चूजिंग वन ऑफ द अबव मेथड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर वी गेट अ प्योर सब्सटेंस. तो इनमें से एक मेथड को अगर हम चूज करते हैं तो हमें प्योर सब्सटेंस मिल जाता है. विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक हैव बीन डिवाइस्ड. In cities, drinking water is supplied from waterworks. A flow diagram of typical waterworks is shown in figure 2.13. 2.13 figure ko dekhiye, aapko pani kis tarike se filter kiya jata hai, purify kiya jata hai, wo dikhaya hai. So, reservoir se pani aata hai, jisko sedimentation tank mein dalte hain, sabse pehle taki usme jo hard sedimentation se wo settle down ho jaye. फिर नेक्स्ट लोडिंग टैंक जिसमें सेडिमेंट के लिए सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज निकल जाती हैं, फिर एक फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है जिसमें लेयर वाइज वो सेपरेट होता है, वाटर अलग, फाइन सैंड अलग, ग्रेवल्स अलग और कोर्स ग्रेवल्स अलग। फिर क्लोरीलेशन होता है ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो किल हो जाए, तब जाके वो घर में आता है। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस, इंडेक्स क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल? डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस व्हिच आर मिसेबल विद ईच अदर। सो आपको सेपरेट करना है मिक्सचर केरोसिन और पेट्रोल का जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। सो आप इनको कैसे सेपरेट करोगे? सो अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल व्हिच आर मिसेबल विद ईच अदर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। सो ऐसे प्रोसेस के लिए हम जो प्रोसेस यूज करेंगे वो है डिस्टिलेशन। इसमें क्या करेंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे, उसमें मिक्सचर डालेंगे, फिट इट विद अ थर्मोमीटर, अरेंज द अपरेटस जैसा आपको डिस्टिलेशन के प्रोसेस में दिखाया है फिगर में, हीट कीजिए मिक्सचर को। फिर इसमें क्या होगा, पेट्रोल जो है पेट्रोल के वेपर्स उड़ने लगेंगे क्योंकि इट हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इट कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका इवेपोरेशन होता है और वो कंडेंस फॉर्म में कंडेंसर आउटलेट से बाहर आ जाता है, और जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो अंदर डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाता है। तो जो केरोसिन है, केरोसिन इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। इस तरीके से हम उसको सेपरेट आउट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। सो फर्स्ट बटर फ्रॉम कर्ड, बटर फ्रॉम कर्ड को हम सेपरेट करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से, जैसे हम मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करते हैं। सेकेंड सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर के लिए हम इवेपोरेशन प्रोसेस यूज करेंगे, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट के लिए हम सब्लिमेशन प्रोसेस को यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से हम किस टाइप के मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं? तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड विथ सम इम्प्यूरिटीज इन इट, एग्जाम्पल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के लिए हम यूज करते हैं कि प्यूरिफाई सॉलिड, सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए, जैसे कि सॉल्ट में से सी वाटर में से सॉल्ट को हम सेपरेट आउट करते हैं। आजकल इवेपोरेशन की जगह क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक ज्यादा यूज होती है। नाउ लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट टॉपिक 2.4, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो नया टॉपिक है फिजिकल और केमिकल चेंजेस। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में हमें डिफरेंस समझना है पहले। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पिछले वाले चैप्टर में, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होते हैं। The properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point are the physical properties of matter. The interconversion of states is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. So, the interconversion of states ka, from solid to liquid, liquid to gas, these are physical changes because इसके अंदर कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं है जो चेंज हो रहा है। Although ice, water and water vapors all look different and display different physical properties, they are chemically the same. तो ice है, पानी है या water vapor है, ये अलग अलग दिखते हैं लेकिन जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहती हैं। Both water and cooking oil are liquid but their chemical characteristics are different. Cooking oil और पानी liquid है लेकिन उनकी chemical properties different हैं। They differ in odor and inflammability. We know that oil burns in air whereas water extinguishes fire. हम सब जानते हैं कि oil तो आग लगाता है लेकिन पानी आग को बुझाता है. It is this chemical property of oil that makes it different from water. यही एक property है जो water और oil को distinguish करती है. Burning is a chemical change. During this process, one substance react with another टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। ये एक तरीके का जो बर्निंग है, एक केमिकल चेंज है। इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है दूसरे के साथ और अंडरगो करता है केमिकल कंपोजिशन में। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता है और हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है, तो इसको कहते हैं केमिकल चेंज। जबकि फिजिकल चेंजेस के अंदर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता और केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन भी साइमल्टेनियसली कहते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, कैन यू डिस्टिंग्विश दीज। जब एक कैंडल जलती है तो उसके अंदर फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? सोचिएगा, इसको आगे डिस्कस करेंगे। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। सो कुछ आपको चेंजेस दिए गए हैं, आपको उन्हें चेंज करके उन्हें बताना है कि इनमें से फिजिकल चेंजेस कौन से हैं, केमिकल चेंजेस कौन से हैं। सो फर्स्ट है कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज इज अ फिजिकल चेंज, इसके अंदर कोई केमिकल में चेंज नहीं आता है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन इज अ फिजिकल चेंज। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ अलमीरा, ये केमिकल चेंज होता है क्योंकि इसमें जो आयरन है आयरन के कंपोजिशन में चेंज आता है और रस्ट नाम का एक नया केमिकल इंट्रोड्यूस हो जाता है या नया सब्सटेंस इंट्रोड्यूस होता है। नाउ बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, बॉइलिंग ऑफ वाटर से स्टीम बनाना फिजिकल चेंज है, इसमें भी कोई नया सब्सटेंस नहीं आ रहा है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ये है केमिकल चेंज क्योंकि इसके अंदर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये है केमिकल चेंज। नाउ डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, कॉमन सॉल्ट को वाटर में मिलाने से क्या होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता, ये एक फिजिकल चेंज है। नाउ मेकिंग अ फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट्स, फ्रूट से सलाद बनाते तो भी उसके द्वारा कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, इट मींस इटसेल्फ इट इज आल्सो अ फिजिकल चेंज। नाउ बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, पेपर और वुड को अगर हम बर्न करते तो ऐश बनती है, ऐश इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, हेंस इट इज अ केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ पेपर और वुड क्या है, केमिकल चेंज है। सो फिजिकल चेंजेस हैं इसमें से कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, मेकिंग अ फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट्स, ये है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंजेस हैं रस्टिंग ऑफ अलमीरा, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड देन ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन and oxygen gas, and last burning of paper and wood. Now question number 2, try segregating the things around you as pure substances or mixtures. So aapko segregate karna hai, yani alag alag karna hai ki kaun kaun si cheeze aapke aas paas pure substances hain aur mixture ke form mein. So ye ek activity basis par hai, aapko khud se observe karke karna hai. So pure substances mein aap ले सकते हैं वाटर, ब्रेड, शुगर, गोल्ड। मिक्सचर से आपका स्टील, स्टील एक तरीके का अलॉय है, प्लास्टिक, पेपर, टैल्क, मिल्क, एयर, ये कुछ हमने बताया, बाकी आप अपने आप भी इनको ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। नाउ टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका 2.5। इसमें आपको पढ़ना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस के क्या टाइप्स होते हैं। सो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट ऑडियो में, अभी आपको एक इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं आपकी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने इसको टर्म को यूज किया था। फिर एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर आए थे जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था एक्सपेरिमेंटली कि इसकी डेफिनेशन दी थी कि एलिमेंट होता क्या है। देन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड का मतलब है कि जो कंपोज हो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। तो ये हमें इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ना है। फिर मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कंपाउंड्स और मिक्सचर हमें एक जैसा लगता है सुनने में, क्योंकि वो भी टू और मोर सब्सटेंसेस का है और वो भी टू और मोर देन एलिमेंट्स का है। सो ये कुछ टॉपिक्स हमें नेक्स्ट ऑडियो में कवर करने हैं, देन हम एक्सरसाइज पार्ट करेंगे और इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।